काफिया शाह हुसैन, पृष्ठ 96, 68, राग भैरो। जिस नगरी ठाकुर जसुनाही, सो काकर कूकर बसती है। अगर चंदन की सार न जाने, पाथर सेती घसती है। छैला सेती घूंघट काढ़े, बैला सेती हसती है। कह हुसैन, फकीर साईदा, सवा शेर की मस्ती है। ठाकुर अर्थात भगवान, काकर अर्थात कौवे, कूकर अर्थात कुत्ते, अगर अर्थात अगरबत्ती, छैला अर्थात नौजवान, बैला अर्थात पशु, हस्ती अर्थात हस्ती। व्याख्या, जिस नगर में भगवान का वास न हो, वह कौओं और कुत्तों की बस्ती किस समान होती है, जहां हर समय शोरगुल मचा रहता है। यदि कहीं अगरबत्ती या चंदन की खुशबू न हो, वहां सिर्फ पत्थरों का वास ही प्रतीत होता है, अर्थात प्रभु भक्ति के बगैर कभी कुछ पत्थरों के समान निर्जीव, पृष्ठ 97, और कठोर प्रतीत होता है। यह नगरी फिर इस प्रकार की होगी, जहां स्त्रियों नौजवानों से घूंघट या पर्दा नहीं करती, बल्कि पशुओं के संग हस्ती खेलती है, अर्थात वह नगरी उजड़ होगी, जहां कुछ भी सहज और सरल नहीं होगा, क्योंकि वहां भगवान का वास नहीं है। वहां सब कुछ अस्थिर और असहज ही होगा। भगवान के नाम के बगैर की गई मस्ती सिर्फ कुछ समय की होती है। जहां सवा शेर अर्थात बलशाली का राज होगा, वहां अन्याय और बेइंसाफी ही बढ़ेगी। उनहत्तर, राग आसावरी। जितु वली मैडा मित्र प्यारा, उर्थ वंश आखी मैडी आजसी, वो एक रहाओ जोगड़ी होवा धूहा पावा, तेरी कारणी मैं मर जावा, तै मिलिया मेरी ताजगी वो एक, राती दरद देह दरमांदी, मरण असाणा वाजबी वो दो, लिटा खोली गले विच पाइया मैं बैरागड़ी आदि दी वो तीन, जंगल बेले फिरा ढूंढे दी, कूक ना सक्का भारी लाज दी वो चार, कह हुसैन फकीर साईदा राती दिहे मैं जाग दी वो पांच। वंज अर्थात जाकर, आजजी अर्थात दुखी हालत, ताजगी अर्थात मन की खुशी, दरमांदी अर्थात दुखी। वाजबी अर्थात निश्चिंत, लिटा अर्थात बाल, बैरागड़ी अर्थात जोगन, दिहे अर्थात दिन। व्याख्या, जिस ओर या तरफ मेरा प्यारा मित्र या महबूब रहता हो, वहां जाकर मेरी तरस भरी हालत के बारे में उसे बताना, अर्थात अपने प्रीतम के सामने ही अपनी दुख भरी स्थिति को प्रकट किया जा सकता है। रहाओ एक, उसे बताया जाए कि मैं उसके इश्क में जोगन हो गई हूँ, अत्यंत बेचैन हूँ, उसके वियोग से मेरी हालत मरणासन हो चुकी है। यदि वह मुझे मिल जाए, फिर मेरे अंदर जीने की इच्छा जाग सकती है और ताजगी महसूस हो सकती है। एक, सारी रात मेरी देह पीड़ा और दर्द से कराहती रहती है, अर्थात उसके वियोग में कष्ट सहती है, ऐसी अवस्था में मर जाना ही बेहतर लगता है। दो, वियोग के चलते मेरी हालत अजीब सी हो गई है, दीवानों की भांति मेरे सिर के बाल खुलकर बिखर से गए, यूं देखकर लगता है कि जैसे मैं कई सदियों से जोगन हो चुकी हूँ। तीन, दीवानगी की हालत में जंगल बेलों में अपने प्रीतम को ढूंढती फिरती हूँ, मगर पृष्ठ 98, शर्म के कारण मैं जोर जोर से उसे पुकारती नहीं। चार, हुसैन के अनुसार प्रभु बिछड़ी जीवात्मा की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे दिन रात किसी और बात की सुध ही नहीं रहती। जो लोग प्रभु की भक्ति में खो जाते हैं, उनकी हालत दीवानों जैसी हो जाती है। वह हर किसी से नाता तोड़कर सिर्फ अपने प्रीतम के इश्क में खो जाते हैं। 70 राग तुखारी। जिन्हा खड़े ना कीती मोरी डोलड़ी, अनी हो माँ दोस्त कहारा नो एक रहाओ, कोलो तैणे वाही लड़ी लड़ी चले, तैं अजे न बाध्या भारा नो दो एक लड़ी चले, एक बन बैठे कौन का उठाए साणिया भारा नो। 3 सिर ते मौत खड़े पुकारे मन लोचे बागू बहारा नो। 4 कह हुसैन फकीर निमाड़ा कोई मुड़े समझावे इन्हा यारा नो। 5 लड़ी अर्थात लड़ी, लदे अर्थात लदे, भारा अर्थात सामान, मौत अर्थात मौत, लोचे अर्थात चाहे। व्याख्या, जिन कहारों ने मेरी डोली को उठाकर जाना था उन्होंने कहीं पर भी सांस नहीं ली, कसूर माँ का है, दोष कहारों को क्यों दिया जा रहा है। रहाऊं अर्थात जिन बुरी आदतों के कंधों पर चढ़ मेरी डोली अर्थात अर्थी गई, उसमें उठाने वाले कहारों का कसूर नहीं है, उन आदतों को अपनाने वाले और अच्छे संस्कार न डालने वाले मति का कसूर है। एक रहाऊं तुम्हारे सामने से कितने ही लोग सामान लद लद कर चले गए, तूने अभी तक अपने सामान को बांधा नहीं है, अर्थात इस दुनिया रूपी सराय में मुसाफिर अपने नेक कर्मों या बुरी आदतों समेत जहान से चले गए, लेकिन फिर भी बाकी मनुष्यों को इस बात की समझ नहीं आती कि एक दिन उन्होंने भी जाने की तैयारी करनी है। यहाँ सदैव के लिए किसी ने भी नहीं रहना, मगर लोग फिर भी इस दुनिया को अपना मुकाम समझने की भूल करते हैं, जबकि यह रैन बसेरे से ज्यादा कुछ नहीं है। 2 अभी तक अनेकों अपना सामान लाद कर चले गए, कुछ चलने की तैयारी में बैठे हुए हैं, सभी अपना अपना भार उठाकर चलते हैं, हर किसी को अपना भार खुद ही उठाकर चलना पड़ता है, अर्थात हर एक व्यक्ति अच्छे बुरे कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेवार होता है। 3 सिर पर मौत का साया हर समय मंडराता रहता है, अर्थात हर एक व्यक्ति अच्छे बुरे कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेवार होता है। 3 सिर पर मौत का साया हर समय मंडराता रहता है, बावजूद इसके मनुष्य का मन बागों और बहारों की मस्ती में नाचना कूदना चाहता है, उसे मालूम है मौत किसी भी समय उसे दबोच सकती है, फिर भी वह सुख चाहता है। 4 प्रश्न 99 फकीर हुसैन का मानना है कि इन नासमझ मित्रों को कोई फिर से मौत की अटल सच्चाई के बारे में बताए ताकि वह अपनी अनभिज्ञता और अज्ञान को छोड़ दे। 5 71 राग तुखारी। जिंदू मैण लिए तेरा नलिया द वक्त विहाड़ा, एक रहाओ राती कत्ते राती अटेरे गोशे लाइयो ताणा, एक जो तंद अवला पै गया साहिब मोलना भाड़ा। 4 दिहाड़े गोइल वासा उठ जड़दा पछ छोताड़ा, चीरी आई ढिलना करसी की राजा की राणा, किसे नवा किसे पुराना किसे अधोराणा, कहे हुसैन फकीर साईं दा बिन मसलत उठ जाना। विहाणा अर्थात गुजर गया, गोशे अर्थात नुक्कड़ या कोना, अव्वाला अर्थात गलत या खराब, साहिब अर्थात भगवान, भाड़ा अर्थात पसंद आना, गोइल अर्थात चरान में बनी हुई झोपड़ी, चिरी अर्थात चिट्ठी, मसलत अर्थात मशवरा। व्याख्या, ए मेरी जान तेरे काम करने की उम्र अब बीत गई है, वक्त गुजर गया है अर्थात मौत सिर पर आ खड़ी हुई है और जाने का वक्त पास आ गया है। एक रहाऊं संसार में बिताया जाने वाला सारा समय रात के समान है, जिसमें चरखा काटकर अटेरन की गई अर्थात दुनियावी कामकाज किए गए लेकिन तूने अर्थात जीवात्मा एकांत में अपना ताणा लगाया। अकेले में भी यदि एक भी धागा गलत पड़ गया तो प्रभु को वह स्वीकार नहीं होगा, अर्थात प्रभु के दरबार में जाने के लिए किसी भी गलत कार्य को स्वीकृति नहीं दी जाती। यह दुनिया गोइल के समान है जो खेतों में अस्थाई तौर पर बनाई जाती है, जिसमें मनुष्य ने 4 दिनों भाव कुछ समय के लिए रहना होता है। यहाँ लंबा चौड़ा फैलाव करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ से जाते समय सभी कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। जब भी मौत का संदेश आ गया फिर कोई भी यहाँ पल भर ठहर नहीं सकता, चाहे वह बादशाह हो या फकीर हो। फिर सभी को अपने काम अधूरे या पूरे या बीच में ही छोड़कर चल देना पड़ेगा। तब तो इतना समय भी नहीं मिलता कि किसी से कोई सलाह मशवरा भी कर लिया जाए या कुछ कह सुन लिया जाए, अर्थात मौत की घड़ी अटल होती है और फिर वह किसी को पल भर की मोहलत भी नहीं देती।